Krishna. कल हमने भक्ति रसामृत सिंधु के जो आमुख है इसका पहले भाग पर चर्चा किया. मुख्य रूप से ये आमुख में दो विषय पर प्रभुपाद जी ने चर्चा की है. एक तो इस ग्रंथ का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं कि किस तरह से ग्रंथ की रचना हुई, किसने रचना की, उस व्यक्ति वो व्यक्ति कौन है, उनके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो ये भक्ति रस का सिंधु आस्वादन करने और प्रदान करने अवतरित हुए, उन्होंने वैयक्तिक रूप से श्रील रूप गोस्वामी को योग्य पात्र मानकर देखकर उन्हें अपना कृपा प्रदान किया और उनके अंदर वो शक्ति संचारित की जिसके द्वारा रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम मन की जो अंदरूनी बात है वो जान पाए. चैतन्य चरितामृत में ये भी लेख आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने एक श्लोक बोला जो बाहरी रूप से देखा जाए तो एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच एकदम भौतिक विषय जैसा श्लोक लगा. स्वरूप दामोदर के अलावा और कोई नहीं जान पाए उसको और चैतन्य महाप्रभु ऑब्वियसली. पर उसके अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने गए जहां रूप गोस्वामी भी रहा करते थे तो हरिदास ठाकुर के कुटिया के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा ताड़पत्र देखा जिसके ऊपर रूप गोस्वामी ने पिछले दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में बोले हुए वो श्लोक और उसके नीचे उसका तात्पर्य कैसे श्रीमती राधारानी कृष्ण को जब कुरुक्षेत्र में मिलती है तब ये विप्रलंब भाव से जो प्रार्थना है वो करती है और वो तात्पर्य रूप गोस्वामी ने लिखा था और रूप गोस्वामी स्नान करने गए थे वो उनको नहीं मालूम. तो महाप्रभु ने ऊपर से कुटिया के ऊपर से जो छत के ऊपर ऐसा लगा के रखा था निकाला और पढ़ा उसको तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि ऐसा कैसा, ऐसे कैसे कि मेरी हृदय की बात इसे कैसे समझ में आ गया. तो स्वरूप दामोदर ने बोला प्रभु निश्चित रूप से आप उस पर कृपा किए हो इसीलिए आपकी मन की अंदरूनी बात जो और किसी को नहीं मालूम वो रूप गोस्वामी को आपकी कृपा से समझ में आया. श्री चैतन्य मनो अभिष्टम. और वो तब होता है जब उस व्यक्ति की कृपा और उस व्यक्ति की शक्ति संचारित होती है. इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जब उन्होंने अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा के समय एक कविता की रचना किए थे और उसमें एक श्लोक लिखे थे वो एब्सोल्यूट इज सेंशियंट दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज मूव्ड. कि आपने साबित किया है एब्सोल्यूटली सेंशियंट परम सत्य जो है वो एक व्यक्ति है ये आपने स्थापित किया है और इम्पर्सनल कैलामिटी जो निराकारवाद है उसको आपने मुंह तोड़ जवाब देकर नष्ट कर दिया है. तो ये सुनकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने प्रसन्न हुए. महाप्रभु रूप गोस्वामी के श्लोक को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उसको वो हमेशा रखते थे, और जो भी उनके पार्षद आते थे, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबको बोलते, देखो रूप गोस्वामी ने क्या रचना, मेरे हृदय की बात इसने जान ली। इसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा रची हुई ये जो रचना है, इसको रखे और जो भी उनके उनके पास आता बोले, देखो ये अभय चरण ने, अभय ने बहुत अच्छे तरह से मेरे हृदय की बात को समझ के लिखा है। और हम देखते हैं उसका परिणाम, जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की मन की इच्छा थी कि पूरे विश्व भर में ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैले, और उन्होंने उनको कहा भी, और वो मन की बात जानकर पूरे विश्व भर में उनकी इच्छा को, भक्ति सिद्धांत मनो अभिष्ठम स्थापितम येन भूतल, ऐसी सही बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की मन की इच्छा जो थी, उन्होंने उनको उनके मन की बात को जाना, पूर्ण रूप से उनकी आशीर्वाद को प्राप्त की, अपनी तपस्या से, अपनी सेवा से, ध्यान पूर्वक श्रवण करके, और उसे इतने प्रसन्न हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रसन्न होकर जब कृपा बहती है तो शक्ति संचालित होती है, कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले, पूर्ण रूप से उन्होंने श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम येन भूतले। तो इस तरह से उस व्यक्ति की, सबसे पहले लेखक की महिमा जानेंगे तब उस ग्रंथ को, ग्रंथ की महिमा को हम जानेंगे। जैसा कृष्ण कौन है ये जानेंगे नहीं तो फिर गीता को उतना महा उसकी महिमा हम नहीं जानेंगे, कौन बोला है ये व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाशकम के अलावा कुछ ग्रंथ नहीं लिखी, तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात कैसे जानेंगे? अगर वो व्यक्ति खुद नहीं लिखता तो कैसे मालूम, और अगर कोई लिखता भी है तो क्या मालूम उसको, क्या मालूम उसके उसकी हृदय की बात इसको क्या मालूम। लेखक जब लिखता है तो उसकी हृदय की बात उसको मालूम है। तो ये स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी आमुख में इस ग्रंथ की रचना किसने की, कैसे की, इसीलिए इतना एक पन्ने में, एक दो पन्ने में वर्णन करते हैं कि कौन है ये व्यक्ति। सबसे पहले जानो, श्रीरूप मंजरी पादा सीम और संपद गोपी भरतुर पदकमल और दास दासानुदास, महा चेतन राधा कृष्ण की जो सेवा है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण सखियां करती है, और सखियों का सेवा मंजरी स्वरूप मंजरी जो है वो है रूप गोस्वामी, और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनकी इच्छा से, ये भगवान की इच्छा से ही हुई है साक्षात। इसीलिए ये ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में हमको प्रवेश करा देगा। चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्या है? श्रीमती राधा रानी का हृदय, और श्रीमती राधा रानी जो है भक्ति रस की सिंधु है। वो महात्मान अस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, अंतरंग लादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, भगवान को आनंद देने वाली। भगवान को कौन आनंद दे सकता है? देखिए, आदमी जब एक व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, कृष्ण का जब शुद्ध भक्त कोई बन जाता है तो शून्यायितम जगत सर्वम, उसके लिए पूरा भौतिक संसार कुछ नहीं, उसमें कुछ भी आकर्षण नहीं उसको। सुखदेव को समय कैसे चल रहे थे, ऐसे कुछ भी आकर्षण नहीं उसको, कोई भी भौतिक चीज से आसक्ति नहीं। तो अगर भगवान का कोई भक्त बन जाता है शुद्ध भक्त, उसको इस भौतिक संसार और भौतिक रस से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर भगवान को इस संसार से क्या लेना देना? भगवान को इस दुनिया में कुछ भी लेना देना नहीं है हमको, तो भगवान इस भौतिक संसार में क्या रमण करेंगे, क्या रस लेंगे? एक भक्त ही इसको तुच्छ समझकर त्याग देता है तो फिर भगवान इसमें क्या आनंद लेंगे? तो भगवान का आनंद 100% आध्यात्मिक है। तो लादिनी शक्ति और भगवान को आनंद देने वाली, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी इच्छा अनंत है, उनकी आनंद लेने की शक्ति भी अनंत है, और उनको अगर कोई आनंद पूर्ण रूप से देना है तो उन्हीं की अंतरंग शक्ति हो सकती है। भगवान सिंधु के समान है, तो उनको आनंद देना मतलब बहुत बड़ा सिंधु होना चाहिए, वो श्रीमती राधारानी, और वो उस उनकी भावना को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु आए। वो कहां हम प्रवेश जा, कहां हम उसका आस्वादन कर सकते हैं, पर रूप गोस्वामी की कृपा से इस चैतन्य महाप्रभु का हृदय, जो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, उसमें एक बूंद चखा रहे हैं, जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चाखाई थे कही तुम्हा तार एक बिंदु, पारा पार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तुमा चाखाई थे तार कही एक बिंदु। तो इस तरह से एक बिंदु है ये भक्ति रसामृत सिंधु। तो इस तरह से इस ग्रंथ की बारे में संक्षिप्त रूप से बताने के बाद, अब दूसरा आमुख का जो दूसरा भाग है वो इस ग्रंथ का शीर्षक क्यों भक्ति रसामृत सिंधु क्यों दिया गया है, इसके बारे में अभी वर्णन कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, क्योंकि मैं इसमें से एक एक करके लाइन में नहीं पढ़ूंगा, पर आप अगर पढ़े होंगे तो आप तुरंत समझ पाएंगे कहां 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 से मैं उसको हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें चार शब्द हैं, भक्ति रस अमृत और सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। ग्रंथ भी, कोई भी रचना, कोई भी नाम ऐसे ही कुछ मन में आ गया इसीलिए नहीं, हरेक शब्द का यहां मतलब है, हरेक शब्द का बहुत ही गहरा मतलब है। तो ये अगर जानेंगे तो हम जानेंगे कि ये दो कवर के बीच में पूरा बड़ा पारा अपार सिंधु है। तो अगर ये सिर्फ शीर्षक जानेंगे, एक सैंपल शीर्षक से हम जानेंगे कि ये दो पन्ने, दो जो कवर है, कवर के अंदर क्या है एक बार खोल दिया और घुस गए तो फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल, उसका आस्वादन कर लिया। तो प्रभुपाद जी इसकी शुरुआत करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और कहते हैं, पहले समझाते हैं कि भक्ति क्या है। यहां लिखते हैं, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। एवरी सर्विस हैज सम अट्रैक्टिव फीचर विच ड्राइव्स द सर्विटर प्रोग्रेसिवली ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक एक वाक्य भी आप पढ़ेंगे और उस पर अगर गहरे से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि सूत्र रूप में प्रभुपाद जी के एक एक वाक्य बहुत सारी चीज कह गए हैं। एक एक वाक्य में, एक वाक्य को सोचोगे और उसके ऊपर ध्यान करने लगोगे तो एक एक दिन चला जाएगा, एक एक हफ्ते चले जा सकते हैं, उतनी गहराई। सबसे पहले कहते हैं भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा। साधारणतः जन साधारण जब भक्ति कहते हैं, भक्ति मीन्स डिवोशन, वहीं रुक जाते हैं वो लोग। भक्ति मीन्स, भक्ति मतलब प्रेम बस, पर नहीं। प्रभुपाद जी उसकी संपूर्ण, उसका जो परफेक्ट मतलब बताते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं, डेफिनेशन। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। और क्यों? क्योंकि यहां बताते हैं कि भक्ति का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना देशभक्ति, है कि देशभक्ति, देश मतलब किसी से प्रेम, तो भक्ति का मतलब है प्रेम, डिवोशन, डिवोशन या प्रेम। अच्छा, और प्रेम का मतलब ही है सेवा। अगर हम कहेंगे प्रेम और उस प्रेम में सेवा नहीं है तो वो प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो ढोंग है। कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारा कुछ भी मेरे को चिंता नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ ढोंग है, सिर्फ नाम के वास्ते बोल रहे बस। प्रेम मतलब क्या? वो कार्य, वो क्रिया जिसका उद्देश्य है, जिससे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं सेवा। अगर मैं किसी चीज से प्रेम करता हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं, प्रेम का मतलब है उस व्यक्ति को प्रसन्न करना, और उसे प्रसन्न करने के लिए जो कार्य है उसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस, सर्विस क्रिया, क्रियाशील है भक्ति। भक्ति इज नॉट ए नाउन, इट इज ए वर्ब। प्रेम जो है एक नाम पद नहीं है, क्रिया पद है वो। इट इज नॉट ए नाउन, इट इज ए संज्ञा, संज्ञा नहीं है वो क्रिया पद है। देशभक्ति, देशभक्ति करूंगा और लोग मरने तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं आराम से अपना खाता पीता सोते रहूंगा, कैसा देशभक्ति? मर मिटने के लिए तैयार, जान देने के लिए तैयार, उसके मतलब देशभक्त। तो भगवान के भक्त हैं पर भगवान के प्रति ना प्रेम है ना कोई क्रिया कर रहे हैं, उनके लिए समय नहीं है हमारे पास, और बाहर से हम लोग कहते हैं भगत हूं, बगला भगत। बगला भगत, आपको मालूम क्यों बोलते हैं बगला भगत? बगुला आप खड़े एक पैर पे खड़ा होता है वो, और एकदम ध्यान करता है वो, एकदम ध्यान, ऐसा लगता है कि वो मतलब समाधि पे है वो, पर समाधि वामाधि कुछ नहीं, मछली को देख रहा हो, कहां से मछली आएगा चुपचाप, और हिल जाएगा तो मछली आएगी नहीं पास में, चुपचाप खड़ा रहता है और देखता रहता है मछली, और जैसे मछली आई फटाक एकदम। तो बगला भगत का मतलब है शांत समाधि, माला जप रहा है पर सोच रहा है कि इस माला से जो लोग मेरे को पता चलेगा कि इतना महान भक्त है तो कुछ डोनेशन देंगे, या इससे क्या, मैं अपनी भोग के बारे में सोच रहा है पर माला फिर रहा है बाहर से, उसको कहते हैं बगला भगत। बगला जैसा खड़ा हो। तो भक्ति मतलब सेवा, भक्ति का मतलब है सेवा। नौ प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तन, श्रवणम भी सेवा है, सुनना भी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो किसका गुणगान करेंगे, श्रवणम नहीं होगा तो कीर्तनम किसका करेंगे, स्मरणम किसका करेंगे, पाद सेवनम किसका करेंगे, अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मा किसको, जिसके बारे में श्रवण करेंगे उसके बारे में सब आठ और प्रकार की चीजें होगी। तो भक्ति का मतलब है सेवा, और वो सेवा कैसा, जिससे भक्ति, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसको प्रेम कर रहे हैं उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए नहीं, मुझे अगर ऐसा करे तो अच्छा लगता है इसीलिए मैं, नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है, और आपको जो अच्छा लगता है उसको करना, ये भक्ति। इसीलिए डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा जो है भक्ति की परफेक्ट व्याख्या है। और फिर बाद में इसके पूरे समझाने के बाद लेटर प्रभुपाद लिखते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लिविंग कंडीशन इज दैट वी हैव ए जनरल प्रोपेंसिटी टू लव समवन। स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति का स्वरूप है कि किसी से प्रेम करना, बिना किसी से प्रेम किए रह नहीं सकता आदमी, अपने आप से प्रेम करेगा, किसी से तो प्रेम करेगा वो, किसी वस्तु से प्रेम करेगा, किसी व्यक्ति से प्रेम करेगा, पर प्रेम करना ये जो है ये स्वाभाविक है। नो वन कैन लिव विदाउट लविंग समवन एल्स। हमारा आत्मा का निर्माण ऐसे हुआ है, ये तभी सुखी रहेगा जब किसी से प्रेम करेगा। हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है। टू लव एंड बी लव्ड इज द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ ऑल सोल। प्रेम करना और प्रेम स्वीकार करना, जब निर्माण हुआ हमारा, ममय वांशो जीवलो के जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं। क्यों भगवान ने हमारा इस तरह से निर्माण किया? आनंदमयोभ्यासात। भगवान आनंद लेना चाहते हैं, और आनंद तब होता है जब आदान प्रदान है, इसीलिए अपने आप को विस्तृत किए। एको बहुश्याम, अपने आप को विस्तृत किए अपने अंश में। तो अंश को बनाया ही ऐसा है कि जब तक वो प्रेम नहीं करेगा, आदान प्रदान नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं रह सकता, अपनी मूल स्वरूप में नहीं आ सकता। सच्चित आनंद, भले सत हो जाए, चित हो जाए, पर आनंद तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो प्रेम नहीं करेगा। उसका स्वरूप ही ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अभी वो उसको बदल नहीं सकते, डिफेक्ट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग परफेक्ट, परफेक्ट मैन्युफैक्चर, ऐसा बनाया गया है। सुखी, जैसा मछली को जब तक पानी में नहीं डालेंगे, पानी में डालो तो आप बस अपने स्वरूप में स्थित है। तो इस तरह से नो वन कैन लिव विदाउट लविंग समवन एल्स। प्रेम करना हमारा स्वरूप है, उसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते। सच्चा सुख हम रिश्ते में ढूंढते हैं। वी कैनॉट बी हैप्पी विदाउट सेटिस्फाइंग दिस डिजायर टू लव। ये जो हृदय में प्रेम करने की इच्छा है, इसको जब तक तृप्त नहीं करोगे, तब तक आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। और जब तक ये प्रेम अपनी मूल स्थिति को प्राप्त नहीं होगा, तब तक पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होगा, पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो पाएगा। किसी और से प्रेम करे, जब भगवान ने निर्माण किया जीव को, तो ऐसा बनाया है कि उनको जब वो प्रेम करता है तभी सुखी होता है वो। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, वो प्रेममयी सेवा जब तक भगवान के प्रति नहीं होती, तब तक पूर्ण रूप से तृप्त कभी नहीं हो पाएगा वो। कहीं तो कुछ कमी महसूस होगी उसको, कुछ तो कम है, कुछ तो गड़बड़ी है, अरे अभी और थोड़ा होता तो अच्छा होता, और थोड़ा होता। तो वो स्वभाव है। शुरू शुरू में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, जैसे 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 बड़ा होते जाता है अपने भाई बहनों को प्रेम करता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे 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 अपने परिवार को प्रेम करता है, अपने मतलब विस्तृत परिवार को, रिश्तेदार, मामा, काका, चाचा, उसके बाद अपने समाज को प्रेम करता है, उसके बाद अपनी देश को प्रेम करता है, और धीरे धीरे सारा मानव समाज को प्रेम करता है। इस तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, विस्तृत होता जाता है वो। पर ये सब करने के बावजूद भी तृप्त नहीं होता वो, पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिल सकती उसे। पर तब तक तृप्त नहीं होगा, बट द लविंग प्रोपेंसिटी, प्रभुपाद लिखते हैं, इज नॉट सेटिस्फाइड इवन बाय लविंग ऑल ह्यूमन सोसाइटी। दैट लविंग प्रोपेंसिटी रिमेन्स इम्परफेक्टली फुलफिल्ड अंटिल वी नो हु इज द सुप्रीम बिलवेड। वो प्रेमी कौन है जिससे अगर प्रेम करे तो मेरी ये प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगी। वो प्रेम करने बिना प्रेम किए आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। और वो प्रेम के लिए ढूंढ रहा है, किससे प्रेम करूं। एवरीवन इज, इसीलिए जॉर्ज हैरिसन उसके लिखते हैं, ऑल वी आर लुकिंग फॉर इज लव, एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। व्यक्तियों से प्रेम कर रहे हैं, चीजों से प्रेम कर रहे हैं, कुछ आइडियोलॉजीज के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, पर ये सब करने के बावजूद भी तृप्त नहीं है आदमी, तृप्त नहीं, कहीं तो उसको कमी महसूस होती है। व्यास देव सब कुछ ग्रंथ पूरे पूरे जन कल्याण उनके द्वारा, उससे बड़ा मनुष्य के प्रति, समाज मानव समाज के प्रति प्रेम किसका हो सकता है। व्यास देव मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो योगदान दिए है उससे बढ़कर कौन सा योगदान हो सकता है। पूरे सब हमेशा हमेशा के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है, सब प्रकार के वेद पुराण उपनिषद सब दे दिए हैं, जिसके द्वारा धीरे 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 सब करने के बावजूद वो भी तृप्त नहीं थे। तो ये तृप्ति तब तक नहीं आएगी प्रेम करने की जब तक हमें ये नहीं मालूम कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको प्रेम करेंगे और पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे। ये खोज, एवरीवन इज लुकिंग, पर उनको मालूम नहीं है, अज्ञान के कारण उनको लगता है इस व्यक्ति से प्रेम करूंगा तो शायद ये मेरे को खुश दे, तृप्त नहीं हुए इसको छोड़ देता है, उधर भागता है, ये शायद। करोड़ों करोड़ों जन्मों से ऐसे हम लोग चले आ रहे हैं, ढूंढते शायद ये इससे मेरे को तृप्ति मिलेगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रेम जो है वो सबको एक साथ गले लगा सकता है जब हम जानेंगे कि कृष्ण पूर्ण वो ऐसा प्रेमी है जिनको प्रेम करने से पूर्ण रूप से हम तृप्त हो जाएंगे। और वो क्यों? क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, उन्हीं से सब कुछ सर्वस्व आ रहा है, भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। उनको अगर हम प्रेम करें तब असली में हमको पूर्ण रूप से तृप्ति होगी, और नहीं, क्योंकि जीव अनंत और असीमित प्रेम चाहता है, अनंत और असीमित प्रेम। और एक सीमित जीव जो 100 साल के लिए जीता है वो अनंत प्रेम और असीमित प्रेम दे नहीं सकता, और जीव अनंत और असीमित प्रेम के द्वारा तृप्त हो नहीं सकता। वेरी बैड कॉम्बिनेशन भौतिक संसार में इन चीज को ढूंढना, अमर प्रेम और असीमित प्रेम कौन दे सकता है? अमर प्रेम सब मरने वाले, इधर कौन देगा? और असीमित प्रेम, अरे हमारा है ही, मेरा टाइम इतना ही है मेरे पास, किसको प्रेम करूं, कितना प्रेम करूं, है ही मेरे पास स्टॉक, आपके पास है ही 2 किलो, अब 1000 लोग भूखे खड़े, क्या किसको खिलाऊं, इसको खिलाऊं तो इसके पास नहीं, कितना मैं दे सकता हूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द नेक्टर ऑफ डिवोशन टीचेस अस द साइंस ऑफ लविंग एवरी वन ऑफ द लिविंग एंटिटीज परफेक्टली बाय द इजी मेथड ऑफ लविंग कृष्णा। अगर सबसे प्रेम करना चाहते हो, बड़ा सिंपल है, कृष्ण से प्रेम करो। जब कृष्ण से आप प्रेम करोगे, सबसे प्रेम कर रहे हो ऑटोमेटिकली। अगर जड़ में पानी डाल दोगे तो आप जानो या नहीं जानो, समझो या नहीं समझो, मानो या नहीं मानो, पर धड़ डाली पत्ता फू, अगर सच्चा प्रेम पेड़ से है तो जड़ में पानी डालो, सच्चा प्रेम इंद्रियों से है तो पेट में खाना डालो, सच्चा प्रेम जीवों से है, सच्चा प्रेम हमको हृदय प्राप्ति करनी है, तृप्ति होनी है, कृष्ण से प्रेम करो। तो प्रभुपाद जी वो भी लिखते हैं, द नेक्टर ऑफ डिवोशन विल टीच अस हाउ टू टर्न द वन स्विच दैट विल इमीडिएटली ब्राइटन एवरीथिंग एवरीवेयर, वन हु डज नॉट नो दिस मेथड इज मिसिंग द पॉइंट ऑफ लाइफ। एनओडी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु है, हमें सिखाता है, ये प्रेम के भूखे हो ना, ये देख इससे प्रेम कर तू, और ये नहीं तो श्रमये वही केवलम न उत्पादये यदि रतिम, श्रमये वही केवलम, तू इतना जप माला जप कर रहा है या तू इतना भक्ति क्या बोलते हैं पूजा पाठ कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, शास्त्रों का पालन कर रहा है, पर वर्ण का धर्म का पालन कर रहा है, आश्रम धर्म का पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर अगर न उत्पादयेत यदि रतिम धर्म सुअनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम, ये प्रेम को तृप्त करने की जो भूख में तू इधर उधर कब कर रहा है, धर्म का काम भी कर रहा है पर ये धर्म का काम भी तुझे तृप्त नहीं करेगा जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगी। तो ये हो गया भक्ति। भक्ति यानी ये परिपूर्णता तब है, मातृभक्ति पितृभक्ति देशभक्ति ये सारी भक्ति की परिपूर्णता तब है जब वो कृष्ण भक्ति में इट कल्मिनेट्स इन कृष्ण भक्ति, नहीं तो फिर अधूरा रह जाता है, ये कभी तृप्त नहीं कर सकता। तो ये हुई भक्ति। अब रस, भक्ति रस, ये शब्द जो रस है इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने इसको मेलो बोल के ट्रांसलेट किया, इसीलिए मैं भी मेलो बोल के कहूं क्योंकि इसका कोई अंग्रेजी में समानार्थक शब्द है ही नहीं। तो रसा, रस का मतलब क्या, जूस, आम रस बोलते हैं ना। आप आम क्यों खरीदते हो, अगर आप आम खरीदते हो उसमें देखते हो इतना बड़ा गुठली है और बाकी सिर्फ छिलका है, कौन पैसा देगा उसकी। आम खरीद रहे हो मतलब आप गुठली के लिए नहीं खरीद रहे हो, छिलके लिए, आम मतलब आप रस के लिए खरीद रहे हो, उसके बाद में गुठली फेंक दोगे, छिलका फेंक दोगे, वो सब निकाल के बाद में रस पियोगे। तो आम ढूंढ रहे हो, मौसम्बी, मौसम्बी मिलता है क्या, अरे मौसम्बी छिलके के लिए नहीं ढूंढ रहे हो आप, मौसम्बी खरीदने के लिए ढूंढ रहे हो, तो आप रस के लिए ढूंढ रहे हो एक्चुअली। अंगूर मिलेगा, अंगूर जिसमें रस नहीं है ऐसा अंगूर खाओगे। कुछ भी चीज ढूंढते हैं तो उसमें हम लोग रस ढूंढ रहे हैं, हम वो भूल जाते हैं एक्चुअली। हम लोग आम आम बोलते हैं पर आम को हमको लेना देना नहीं है, रस के लिए ढूंढ रहे हैं हम लोग, एक प्रकार का रस, वो आम में ही मिलता है। वो आम ढूंढ रहा है कोई, मेरे को पता नहीं आया आम खाने की इच्छा हो गई, कोई बोलेगा अरे अंगूर खा, अंगूर नहीं मेरे को आम चाहिए, मतलब जिह्वा को वो आम रस चाहिए अभी, क्योंकि हर एक फल में अलग अलग प्रकार का एक रस है और वो रस जो चाहता है दूसरी जगह नहीं मिल सकती। तो किसी चीज को ढूंढना, और आदमी चाहता है रिश्ता, रिलेशनशिप्स, रिलेशन एक फल है, पर फल इसलिए क्योंकि रस चाहिए हमको। उस रिश्ते में अगर आदान प्रदान नहीं, नाम के वास्ते रिश्ता है बस, लेबल, ये मेरी पत्नी ये मेरा पति, रिश्ता वरिश्ता कुछ बोलो मत, बस है ना, लेबल है ना, अभी चलेगा नहीं। उसमें एक फल क्यों ले रहा है, रस लेना है हमको, फल से मतलब नहीं हमको, रस से मतलब है। तो रस मींस जूस, और जूस मतलब एसेंस ऑफ द फ्रूट, जो रस है वो फल का सार है, फल का सार रस में आता है। इसी तरह से आदमी रिलेशनशिप चाहता है, संबंध चाहता है, पर वो संबंध किस लिए, उसमें एक प्रकार का रस है, और वो रस जो है बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज में एक रस है, हर एक संबंध में एक रस है, और वो रस की रस जो है प्रवृत्त करती है आदमी को कुछ काम करने के लिए। क्यों हम लोग गुठली डालते हैं, गुठली डालने के बाद उसको पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद धीरे धीरे देखते रहते हैं, पेड़ आया, अभी थोड़ा एक पत्ता आया, ये आया, हमको ये सब मतलब नहीं है, हमको एक ही चीज से मतलब है, ये सब करने के बाद में रस मिलेगा ना, फल मिलेगा, और फल को ऐसा फोड़ूंगा उसके बाद रस। वाह, वो रस के लिए आदमी कितना समय, 20 साल तक पेड़ डाल के, ये डाल के क्या क्या करता है वो, क्यों? अंत में उसको रस चाहिए। तो उस रस की खोज में द ऑल द एंडेवर, जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश क्यों है, उसके पीछे एक रस है। तो हां, जो आनंद एक संबंध में कुछ आनंद मिलता है हमको, उस आनंद को जो ढूंढते हैं उसको कहते हैं रस। अब कोई भी एक रिश्ता बनाने के लिए हम लोग कितना घुमा फिरा के इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ा उसको खुश करने के प्रयास करते हैं रिश्ते में। क्यों रिश्ता बनाना चाहते हैं? क्योंकि हर एक रिश्ते में एक प्रकार का क्रिया ये सब करते, इतना सारा क्रिया करने का उद्देश्य यह है कि वो रस मिले। तो किस चीज, क्या चीज हमें क्रिया करने को प्रवृत्त करती है, उत्तेजित करती है? रस का खोज। सो इट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अस टू अ सर्टन एक्टिविटी और रिलेशनशिप इज द टेस्ट वी एंजॉय इन इट। उस रस के पीछे ढूंढ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ड्रिवन बाय अफेक्शन फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ए फैमिली मैन वर्क्स डे एंड नाइट। अभी देखो कौन आदमी गधे के समान सुबह जाकर शाम को आना, शनिवार को भी नहीं, रविवार को भी छुट्टी नहीं, क्यों काम करता है इतना? अगर उसको बोलो तेरे को खूब पैसा दूंगा, काम करेगा? क्यों करेगा? क्यों इतना तकलीफ उठा रहा है वो पैसे के लिए? क्यों पैसा? ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चों का देखभाल करे, और देखभाल करने के बाद वो अगर तृप्त होके एक मुस्कुरा दे, बहुत बहुत धन्यवाद, बस मिल गया रस। पर ये सब करने के बाद ऐसा तो बेचारा हालत हो जाता है, बोले इतना परिश्रम किया, आम डाला और बाद में पता चला कि ये ऐसा वैरायटी का पेड़ है कि इसमें फल ही नहीं निकलता, और निकला भी इसमें रस ही नहीं निकलता, बोला अरे बर्बाद हो गया 20 साल का मेरा काम। और बेचारा मतलब देखिए 20 साल काम करने के बाद श्रमये वही केवलम, इसीलिए आदमी सुसाइड कर लेता है कि इतना बर्बाद, जीवन बर्बाद हो गया मेरा इस रस के ढूंढने के लिए। मैंने आम को इतना होगा, इतना बड़ा पेड़ हो गया, और पेड़ को एक एक पत्ते को देखता था, वाह पत्ता आया, अभी फूल आएगा, फूल आया, खुश हो गया, सुगंध ले रहा था, फिर बाद में फल आया, और बाद में देखता हूं उसमें रस है ही नहीं। तो निश्चित रूप से आदमी सुसाइड कर लेता है, तंग आ जाता है, वो क्या है इसमें कुछ मिलता ही नहीं, गधे के समान काम कर रहा। तो ड्रिवन बाय अफेक्शन फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ए फैमिली मैन वर्क्स डे एंड नाइट। ए फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क्स इन द सेम वे फॉर लव ऑफ हिज ग्रेटर फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम, एक बड़ा परिवार। आदमी दान क्यों देता है? इतना काम करने के बाद दान देता है, इधर एक दान उधर एक दान, फिलंथ्रोपिस्ट। और दान देने में क्या है, अपना खून पसीना एक किया हुआ पैसा क्यों देगा दूसरों को? क्योंकि ये देने में एक प्रकार का प्रेम है समाज के प्रति, हमको लगता है कि नहीं लोगों को, मेरे को इतना मिला उनको भी मिलना चाहिए, और देने में एक प्रकार का उसमें रस मिलता है उसको, देने में एक प्रकार का रस मिलता है उसको। तो वो रस से वो आदमी काम करता है, इतना काम करता है ताकि वो देता है देता है देता है। इसी तरह से देश प्रेमी जो है वो अपने देश वालों के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। तो द फोर्स विच ड्राइव्स द फिलैंथ्रोपिस्ट, द हाउस होल्डर एंड द नेशनलिस्ट इज कॉल्ड रसा। किस चीज के लिए कर रहा है, उसमें उसको कुछ रस मिलता है, और ए काइंड ऑफ मेलो हूज टेस्ट इज वेरी स्वीट। पूरा जीवन वो करने के लिए तैयार है, उसमें उस रस आस्वादन करता है। बिना रस के देर इज नो मोटिवेशन टू वर्क, और जब विकृत हो जाता है तो क्या क्या आदमी करता है रस के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कलकत्ता में एक बार गया, वहां कलकत्ता में देखा एक बार एक आदमी मुर्गी काट रहा था और ऐसे काट के उसका आधा काट दिया और वो छटपटा रही है, वो उछल उछल रही है और वो देख के उसको आनंद आ रहा है, विकृत रस, किसी को तड़पते देखकर आनंद आना, तमोगुण में वो भी विकृत हो जाता है, ऐसा आनंद आता। प्रभुपाल बोलते मेरा पेट में एकदम अजीब अजीब लग रहा था, घृणात्मक रूप से मैं देख रहा था, उसका बच्चा रो रहा है देख के डर के मारे, उस मुर्गी को ऐसा तड़पते देखकर, पर इसको आनंद आ रहा है। बच्चे बोल रहा चुप, रोने की बात है, मजा आनंद ले, एक प्रकार का विकृत आनंद है, रस है उसमें, वीर रस, शौर्य रस, सबका रुद्र रस, रौद्र, तो ये सब अलग अलग उसके विकृत होते हैं, तीन गुणों में अलग अलग प्रकार से विकृत हो जाते हैं, पर हर एक व्यक्ति रस के पीछे है और ये कार्य कर रहा है। पर अब पर वो तृप्त क्यों नहीं होता? अगर व्यक्ति रस के पीछे है और इन चीजों में रस है, जरूर है निश्चित रूप से, तृप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि दो प्रकार के रस होते हैं, एक भौतिक रस और एक आध्यात्मिक रस। तो भौतिक रस और आध्यात्मिक रस में क्या अंतर है? भौतिक रस के अंदर दो कमियां हैं और वो दो कमियां होने के कारण वो तृप्त नहीं कर सकती जीव को। पहला है चपल सुख, भौतिक रस का लक्षण है वो चपल सुख। चपल सुख मतलब थोड़े ही समय के लिए है वो, उसके बाद वही रस वही जीवा उतना रस नहीं दे सकता वो। उदाहरण के लिए गुलाब जामुन एक लो अच्छा लगेगा आपको, दो लो वाह फर्स्ट क्लास, तीन लो वाह, चार लो वाह वाह बस, पांच छह सात नको नको लाला, जिह्वा वही है, गुलाब जामुन वही है, गुलाब जामुन में रस में परिवर्तन नहीं हुआ है, उतना ही मिठाई है, उतना ही सब कुछ है, उतना ही रस है, जिह्वा वही है। पहला वाला क्यों आनंद दिया, छठा वाला क्यों आनंद नहीं दे रहा है, और सातवां के बाद बोलते हैं बाप रे और दो महीना गुलाब जामुन दिखाना नहीं मेरे को। तो ये दूसरा, दूसरा क्या है? भोग त्याग, भोग त्याग। पहले भोग करने की इच्छा और अति भोग कर लिया तो दो महीने के लिए, अब नाम सुना तो भी मेरे को अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप है भौतिक रस का। पहला है चपल सुख, पत्नी वही है, पति वही है, और रस कहां चला गया? पहला तीन महीना कितना रस मिला, अभी वो चेहरा देखने से भी देखने नहीं आती, इच्छा नहीं होती। क्यों? तो ये रस कहां चला गया? तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज भौतिक रस जो है इसमें दो कमियां हैं। एक चपल सुख है कि रस वही है पर उतना ही आनंद नहीं दे सकता, उसमें रस कम नहीं होती पर हमें वो आनंद नहीं दे सकता, और अगर भी दिया मृत्यु, हम मर जाएंगे या वो चीज मर जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, फिर दुख। तो एक है अनित्यता, अनित्यता, और चपल, चपलता, कभी सुख देती है कभी नहीं देती, और दूसरा है कभी कभी भोग करने की इच्छा होती है रस के लिए, और कभी वो रस का नाम लिया तो दो किलोमीटर दूर चले जाते, बोले नहीं ये नहीं चाहिए अभी। भोग त्याग, भोग त्याग। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप भोगी भोग का भी नहीं है और त्याग का भी नहीं है। हमारा स्वरूप जो है भोग का भी नहीं है और त्याग का भी नहीं है। भोग धर्म और त्याग धर्म। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार एक लोमड़ी थी, उसको लोमड़ी को इच्छा हो गया मैं अंगूर खाऊंगी, तो अंगूर के खेत में गई वो, और अंगूर जो है ऊपर लटके हुए थे बहुत ऊपर, तो छलांग मारी छलांग मारी छलांग मारी छलांग मारी भाव छलांग मारी, एक घंटा दो घंटा छलांग मारने के बाद अंगूर नहीं मिला, तो जाने लगे अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे। बोले अंगूर क्यों खट्टे, अंगूर तो वही है वैसे के वैसे ही है, तू पहले भोग करने की कोशिश की नहीं हुआ, अभी त्याग वैरागी बन गए, वाह अंगूर अंगूर खट्टे। तो इस तरह से आदमी इस भौतिक संसार को भोग करने की कोशिश करता है, सब चीज मेरा, ईश्वरो हम अहम भोगी, पर भगवान कहते हैं नहीं, भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोगतारम यज्ञ तपसाम, मैं भोगता हूं तुम भोगता नहीं हो, जीवेर स्वरूप होए भोगता नहीं, जीवेर स्वरूप होए दासत्व, किसका, कृष्णेर नित्य दास। तो भोग धर्म भोग धर्म भोग धर्म, और भोग से तंग आकर त्याग धर्म त्याग धर्म त्याग धर्म वैराग्य। पर वैराग्य में भी खुश नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं मायावादी लोग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहले तो भोग करने गए संसार को, चूस ले चूसे चूसे चूसे, चूसने के बाद में तंग आ गए, क्योंकि ये भौतिक संसार जो है हर एक का एक एक प्राइस टैग लगाया हुआ है, हर एक चीज का एक मूल्य है, भोगने जाओगे तो उसका एक रिवर्स ऐसा कुछ मूल्य देना पड़ता है जो बड़ा महंगा पड़ता है। तो भोग करने के बाद तंग आने के बाद त्याग कर दिया, उल्टी कर दिया उसको, खूब खा लिया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा खा लिया अच्छा लगा बोल के तो बाद में उल्टी हो जाता है। इसी तरह से भोग करने का प्रयास किया, भोग से तंग आ गया, तंग आने के बाद अभी त्याग, पर त्याग धर्म भी अतृप्त नहीं हो, क्यों, अगर ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, और ये मिथ्या है तुमने उल्टी कर दिया और संन्यास ले लिए, अभी फिर अस्पताल क्यों खोल रहे हो, समाज सेवा क्यों कर रहे हो, स्कूल क्यों खोल रहे हो, पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हो सैफरन पहन के, ये तो तुमने उल्टी कर दिया, ये तो मिथ्या है सपना है ये सब, तो सपने में क्यों घुस रहे हो फिर से। कभी कभी ये देखा है आपने, अच्छा सपना गिरता रहता, वाह कुछ भोग कर रहे हैं और बाद में नींद खुल गया, फिर से सोना चाहता है थोड़ा तो, अरे फिर से वो सपना आ जाता कितना, क्योंकि उठ गया तो मालूम हो गया कि क्या दुनिया है, नहीं सपने में चला जाएंगे, सपनों की दुनिया। तो इस तरह से भोग 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 करके तंग आने के बाद तूने त्याग दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सिद्धांत बना दिया तूने अपना एक जो सत्य है ही नहीं, और फिर त्याग करने के बाद फिर से जहां से उल्टी किया था उसको चाटने क्यों आया तू, क्यों, क्योंकि उसमें रस रस वहां नहीं मिल रहा है, क्योंकि त्याग करके आदमी नहीं रह सकता, भूखा आदमी समझ लीजिए कोई भूखा है, ठीक है, भूखे आदमी को कुछ दे दीजिए आप, एक कुल्फी दे दो उसको, हाँ, और कुल्फी खाने के लिए जाता है, कुल्फी रेती में गिर जाता है, अरे 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 सब खराब हो गया, तो अभी खाता है तो थोड़ा कुल्फी मिलता है थोड़ा रेती भी आता है, पानी बोलता है छी मेरे को नहीं पाई, फेंक दिया, फेंकने के बाद इधर उधर देखता है कि और कुल्फी है ही नहीं, भूख भी लग रही है, तो बोलता चलो फिर से वही खा लेगा, थोड़ा तो रेती आएगा पर खाएंगे। तो इस तरह से भूख है, प्रेम के भूखे हैं, संबंध के भूखे हैं, भौतिक संसार में संबंध करने की कोशिश किए और वो संबंध तृप्त नहीं हुआ, चपल सुख है, भोग करने से नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा मूल स्वरूप भोगी नहीं है, तो हमने त्याग दिया, त्याग के त्याग धर्म ले लिए, पर भूख तो वैसे ही है, भूख वहां नहीं मिला, सेवा करने की भूखे हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप है सेवा करना, तो मानव सेवा ही माधव सेवा, वाह, क्योंकि माधव नहीं मिले, माधव पे तो विश्वास नहीं है, तो जो उल्टी किया था तुमने, जिस सेवा को मिथ्या बोल के त्याग दिए थे, अब उसको चाटो। मानव सेवा, अभी मानव सेवा कैसा रास्कल, ये तो तूने उल्टी कर दिया था, ये तो मिथ्या है, ये तो सपना है, क्यों वहां वापस चाट रहा है उसको? क्योंकि तू भूखा है और तुझे वो सेवा माधव सेवा नहीं मिली, इसीलिए मानव सेवा ही माधव सेवा। तो इससे हम देखते हैं कि भोग धर्म और त्याग धर्म, इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी सेवा कर, मानव सेवा नहीं, जड़ में पानी डाल दो पहले, और मानव माधव सेवा से संबंधित मानव सेवा कर, तब वो असली सेवा है। तो भोग धर्म त्याग धर्म, आदमी ऐसा पेंडुलम जैसा, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी वैसा कभी वैसा, तृप्त नहीं है। इसीलिए मायावादी लोग जब भी हमसे मुझसे मिलते हैं, मैं देखता हूं भक्तों से जब भी मिलते हैं वो, उनका एक ही प्रश्न होता है, आप कितने साल से हो, सच में सुखी हो क्या आप? क्योंकि उनको लगता है कोई भी वैरागी लिया तंग आके लिया है। ब्रिटिश के जमाने में एक आदमी था, बड़ा ऑफिसर था, उसका फर्स्ट क्लास दाढ़ी था, उसका बहुत सुंदर दाढ़ी ट्रिम करके एकदम चुस्त दाढ़ी था एकदम। तो उसने एक दिन फनस खाने का प्रयास किया, किसी ने बोला था फनस बहुत अच्छा होता है, और उसको पता नहीं कैसा खाना है, तो खाने के बाद उसकी दाढ़ी एक लंबा बाल बन गया सब चिपक चिपक के, तो बेचारा उसका दाढ़ी निकालना ही पड़ा बाद में उसको, और अट्ठा गम जैसा लग गया उसको, तो उसने काट दिया और फनस को दूर से प्रणाम किया। तो अगले दिन जब ऑफिस में आया तो उसका एक असिस्टेंट था, उसका भी एक दाढ़ी था, तो थोड़े दिन के बाद ऑफिस असिस्टेंट ने दाढ़ी काटा, तो बोला तू भी फनस खाया ना? बोला नहीं मैं फनस नहीं खाया, मैं ऐसे शेव किया। नहीं, मुझे मालूम है तू फनस खाया है। क्यों? क्योंकि मैं फनस खाने गया और मेरा ऐसा नहीं, मैं फनस खाया, मैं तो उसमें से निकाल के फनस खाया और आज इच्छा थी इसीलिए मैंने दाढ़ी निकाल। नहीं नहीं नहीं, तू जरूर फनस खाया। तो इस तरह से मायावादियों का अनुभव ऐसा है, भोग भोग करने की कोशिश किए, भोग से तृप्त नहीं, माया माया, अंगूर खट्टे, वाह अंगूर हमेशा वैसे, फिर से चाटने के लिए क्यों आया तू अंगूर? फिर अगर अंगूर खट्टे हैं तो क्यों आया चाटने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये समझ जाएंगे तो हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे। भोग धर्म त्याग धर्म, दोनों को त्यागो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तो कर्मी जो कर्मकांडी ग्रंथों को स्वीकार किए हैं, पर कर्मकांड, इसको देवता को पूजा, इसकी देवता को पूजा, पर वो देवता नहीं दिया भोग तो किसी और की पूजा। तो भोग धर्म क्या होता है? भोग त्याग, भोग त्याग। एक देवता को पकड़ा, वो तृप्त नहीं किया, उसको त्यागा, दूसरे को पकड़ा, अरे तुम भोगी है ही नहीं, कोई देवता तुमको तृप्त नहीं कर सकता। फिर उससे वैराग्य ले लिया, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषयर भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, भक्ति रस अमृत नहीं मिला तो इसको अमृत इस त्याग धर्म में या भोग धर्म में ढूंढते ढूंढते। इसीलिए शास्त्र कहता है कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषयर भांड, विष का वो बर्तन है, अमृत बोलिया जेवा खाए, अमृत समझकर उसको खाने जाते हो, अमृत नहीं है, मर जाता है, खत्म होता है, नश्वर है, चपल है। नाना योनि भ्रमण करे कदर्य भक्षण करे, नाना योनि उसी की ढूंढ में, कभी भोग कभी त्याग, कभी ऊपर कभी नीचे, ब्रह्मांड भ्रमित ऐसा घूमते 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 घूमते। अगर उसकी कृपा, कैसे तो कृपा हो गई, और वो अगर सदगुरु के शरण में आया और उसको भक्ति रस का आस्वादन हुआ। अब भक्ति रस कैसा है? सेवा, सेवा वो हमारा अवर बर्थ राइट बोलते हैं ना, जन्म जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म नहीं अजन्म सिद्ध अधिकार, अन्य माने अजो नित्य, तो जन्म नहीं एक्चुअली, अजन्म सिद्ध अधिकार है हमारा सेवा, और वो सेवा में जब स्थित हो गया तो भले भोग में रखो त्याग में रखो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया, उनके शिष्यों ने पूछा, ऐसे कैसे रूप गोस्वामी त्याग धर्म, एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन रहते थे, त्याग दिए थे संसार को, वो भी महान भक्त माने जाते हैं, और रामानंद राय, पुंडरीक विद्यानिधि, भोग, युधिष्ठिर महाराज, ये महान भोग ऐश्वर्य में रहे और उनको भी महान भक्त, आप तो कहते कि भोग धर्म और त्याग धर्म दोनों गलत है, पर हम तो देखते हैं भोगी भक्त लोग हैं, मतलब भोगी भक्त मतलब है कि भोग की स्थिति में रहे, परीक्षित महाराज ऐश्वर्यशाली स्थिति में रहे, रामानंद राय बड़े गवर्नर पोस्ट में रहे, महाराज प्रताप रुद्र और सारे गोस्वामीगण, इसको कैसे समझा जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी समझाते एक लेक्चर में, कहते हैं देखो एक स्त्री है पतिव्रता स्त्री, वो स्त्री जब पति घर में रहता है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सजाती है पति की प्रसन्नता के लिए, और जब पति बाहर गांव गया हुआ है तो सजाने में अपने आप को इतना उत्सुक नहीं होती हो, क्यों किसको किसके लिए सजाना है, वेश्या है किसी और के लिए सजेगी तो क्यों सजना है, ठीक है सिंपल। तो उसको सजने से लेना देना नहीं है, नहीं सजने से लेना देना नहीं, उसको पति से लेना देना है, पति है उसको प्रसन्न होता है तो मैं सजूंगी, अगर नहीं है वो तो किसके लिए, ठीक है नहीं सजूंगी। तो उसको सजने से या नहीं सजने से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है पति को प्रसन्न करने से, बस। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि भक्त को मतलब है भगवान को प्रसन्न करने से, अगर भोग ऐश्वर्य स्थिति में रहने को भगवान बोले तो फिर त्याग देना मूर्खता है, अगर त्याग ने बोला जाए तो उस समय भोग करने की इच्छा इंद्रतृप्ति है, और भोग करने की स्थिति में रहने को बोला जाए उस समय त्याग कर देना इंद्रतृप्ति है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, हां ये अकाउंट ही ऐसा है, ये अकाउंट ही ऐसा है, प्रभु मारो भी राखो भी ये जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, किसी को बोले श्री चैतन्य महाप्रभु, महाराज प्रताप रुद्र सब छोड़कर साधु बनने वाले थे, उनको बोला गया नहीं वहां तुम अच्छी तरह से सेवा कर सकते हो वहीं रहो, तुम रूप और सनातन बड़े प्रभावशाली स्थिति में थे पर उनका सेवा कुछ महत्वपूर्ण था, सब छोड़ो वृंदावन में जाओ और वहां आड़ी पेड़ के नीचे रहो बस। तो रूप और सनातन के लिए वापस वही स्थिति में रहना भोग होता, और महाराज प्रताप के लिए कहने के बावजूद भी त्याग कर अगर वो साधु बन जाते तो वो भोग हो जाता उनके लिए, क्यों, क्योंकि हमको सेवा से लेना देना है, करोड़ों के बीच में रहकर सेवा या रोड पे रहकर सेवा, हमको सेवा से मतलब है। तो इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजामि। तो भक्ति रस जो है ये अनंत गुणा मधुर है, भक्ति रस और अमृत, और ये रस किसमें है, भक्ति रस, भक्ति रस है सेवा में, सेवा रस, भक्ति रस है सेवा रस, और वो सेवा जो है न केवल चपल नहीं है, वो अनंत है, और भोग भी नहीं है त्याग भी नहीं है, वो एक्चुअली पूर्ण रूप से आनंद देने वाला है आत्मा को, और अमृत, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो, नेहा विक्रम नाशोस्ति न इह अभिक्रम नाश अस्ति, इसमें नाश नहीं है, आप अगर सेवा किए हो 2% अगले जन्म में 3% से शुरू करे हुए, इसलिए हम देखते हैं कोई कोई फटाक से आ जाता है भक्ति में और ऐसा प्रगति कर जाता है और टिके रहता है, कभी उसका उथल पुथल नहीं, मतलब हलचल नहीं होता उसके जीवन में, और कभी कभी हम देखते हैं 20-20 साल से कोई कर रहा है, कभी कभी उठा कभी गिरा, कभी उठा कभी गिरा, बेचारा कैसे तो 16 माला किया तो लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया मैंने। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत कर रहा है, कोई बहुत किया हो और अभी जहां से छोड़ा वहां से कर रहा है, स्वाभाविक रूप से आसक्ति हो जाती है उसको हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति। जॉर्ज हैरिसन ने बोला रूपा से मिलने के बाद कि इवन बिफोर आई मेट द हरे कृष्ण आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण। बोले गंधर्व होगा ये, नहीं तो इतना सुंदर गाना और इतने आसक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र से। जब श्याम सुंदर को प्रभु को पहली बार देखे उन्होंने बोला वेयर वर यू पीपल आई वॉज लुकिंग फॉर यू, वेयर वर यू ऑल दिस टाइम। पहली बार देखे, हजारों लोग बैठे हुए इंटरव्यू के लिए उनसे मिलने के लिए, और वो एक क्षण के लिए दरवाजा खोला उसने जॉर्ज हैरिसन, इतने लोग बैठे हुए सब लोग लालाय थे उसके लिए एक क्षण लेने के लिए, और वो दरवाजा बंद करने वाला था, फिर उसने दूर में देखा कि श्याम सुंदर प्रभु हरे कृष्ण बैठे हुए शिखा लेके, तो दरवाजा खोल के सीधा सबके बीच चलते चलते उनके पास आए, बोले हे वेयर वर यू ऑल दिस टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर यू। पहली बार मिल रहे, तो नेहा विक्रम नाशोस्ति अमृत, ये अमृत है, ये जो भी हमने इकट्ठा किया इस बार ये एब्सोल्यूटली इंडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि आत्मा के अकाउंट पे है। आत्मा का नाश नहीं होता, इस अकाउंट का भी नाश नहीं होता। तो ये सेवा भोग रस और त्याग रस नहीं, इसे हम सो लेना सेवा रस। तो भक्त रस और दूसरा मतलब यह भी है अमृत का कि बहुत मीठा होता है। न केवल अमृत का दो मतलब है, अमृत मृत यानी इसका नाश नहीं होता, इस रस का नाश नहीं होता। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अच्छा हरे कृष्ण मंत्र कितना दिन करना पड़ेगा, उसके बाद और कुछ मिलता है और कुछ नहीं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द साध्य, मतलब अभी कर रहे हो उसके बाद सब परफेक्शन हो जाएगा तो क्या करोगे, विल चैंट हरे कृष्ण। अभी तो 16 माला करते हैं, बाद में कीर्तनीय सदा हरि, बाद में आध्यात्मिक संसार में ना नींद है ना भूख है, 24 घंटे जप करते रहेंगे। फर्स्ट क्लास 24 घंटे जप, अभी 16 माला करना हमको तकलीफ है क्योंकि रस नहीं है, आकर्षण नहीं है हमको कृष्ण के प्रति, क्योंकि जंग पड़ गया है। कृष्ण बड़े आकर्षक है, वो आकर्षण एक्चुअली जो है मूल आकर्षण है, जब ढक जाता है तो इधर उधर हम आकर्षित हो जाते। तो भक्ति रस अमृत, तो एक उसका मतलब है मृत, मृत नहीं है वो, नष्ट नहीं होता ये रस, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। देखिए ऐसा कुछ कोई कहेगा कि रूप गोस्वामी ने लिखा इससे पहले क्या था, ये सब था क्या? हां, भगवत गीता में 5000 साल पहले भगवान ने ये बोला है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, हमको मालूम है कि विषय भोग नहीं करना चाहिए, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मां, विषय भोग करोगे तो भोग रस और बाद में त्याग रस आ जाएगा। तो विषया विनिवर्तन्ते, हमें मालूम है उसको त्याग करना चाहिए, पर रस वर्जम, हमने वर्जन कर दिया, ये नहीं मांसाहार नहीं नशा नहीं जुआ नहीं व्यभिचार नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, बहुत सारा नहीं बोला हमने, बट रसो अपि अस्य, पर रस के भूखे हैं हम। तो क्या करना है, ये रस तकलीफ देता है पर रस के भूखे हैं, भूख है पर नहीं मिल रहा है भोग, और इसीलिए हम त्याग देते हैं, अंगूर खट्टे हैं पर खाने की तो इच्छा नहीं गई, इसीलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक ऊंचे रस का आस्वादन करो। एक ऊंचे रस का जब आस्वादन होता है तो इस भौतिक विषय रस, विषय वस्तु में जो रस मिलती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनी हरन्ति प्रसवम मनः। जब तक ऊंचे रस का आस्वादन नहीं है और नीचे रस को त्याग दिए मायावादी जैसे, तुम सुखी नहीं हो सकते। 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद भी रस की जो इच्छा है विश्वामित्र मुनि में गई नहीं, और क्योंकि उनको ऊंचे रस का आस्वादन नहीं था, फिर से मेनका के प्रति आकर्षित हो गए। शौबरी मुनि कई साल तक इंद्रियों को यथातो ही कौनते विपश्चित ज्ञान है, प्रयास किए, नदी के अंदर जाके बैठ गए, एकांत में जाके हिमालय में बैठ गए, कर लिए, पर भूख कहां है भाई? भूख नहीं गया ना अभी, आत्मा का भूख। भले तुम आंख बंद किए, गांधी जी जैसे बंदर, तीन बंदर, आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, पर अंदर से भड़क रहा है, तो कितना बंद करके रखोगे? एक दिन विस्फोट हो जाएगा। 15 साल से बंद किया आदमी ऐसा 15 दिन ऐसा खाएगा बाद में, पूरा कॉम्पेंसेट करेगा, 15 साल से जो नहीं किया आज एक साथ करूंगा मैं, नहीं हो पाएगा। विश्वामित्र का नहीं हुआ, तो हम लोग कौन से खेत के मूली है? तो वो इसीलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परह रसवर्जम रसो परम दृष्ट्वा। परम दृष्ट्वा मीन्स क्या? मत परह। जब वो रस, कृष्ण रस, भक्ति रस में अगर मिल गया उसको, उसमें अगर कांटेक्ट आ गया, रसवर्जम तानी सर्वाणी संयम, नियंत्रण करो, क्योंकि हमको मालूम है ये नहीं मिलने वाला, पर फिर भी आकर्षण है, भूख है, और सामने आइसक्रीम पड़ा हुआ है, मालूम है वो ठीक से अच्छा से गंदा पानी से बना हुआ है, पर क्या करें अभी खा लेंगे, भूख लग रहा है, नहीं हमको नहीं खाना है, पर कुछ तो और मिलना चाहिए। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भक्ति रस अमृत, ये अमृत जैसा मीठा है, इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ओ ये नाम नाम हरे कृष्ण महामंत्र, ये कृष्ण, ये दो अक्षरों में इतना रस है कि काश मैं सोचता हूं कि मेरे पास 1,00,000 कान हो और अनंत जिह्वा हो। समझ लीजिए आप बहुत भूखे हैं, आप प्यासे हैं, और आपके पास एक बड़ा टांकी है जिसमें गन्ने का रस है, और उसमें एक छोटा सा छेद है, और 2 मिनट में 1 बूंद रस आता है। एक तो प्यास है और पूरा टांकी पीने का इच्छा है, पर वो टांकी पूरा सील हो गया है, और 1 बूंद 2 मिनट में 1-1 बूंद आता है, बोलकर इसको 50 छेद मार दूंगा इसमें से ताकि रस निकले और पी जाऊं। तो इस तरह से जो भगवान की जो भक्ति रस अमृत सिंधु जैसा आस्वादन कर रहा है, आस्वादन करने की इच्छा है, वो देखता है कि सिर्फ 1 जिह्वा है और 2 ही कान है, छेद, बस 2 ही छेद है, तो उसको लगता है काश मेरा 1,00,000 ऐसे कान होते ताकि मैं आस्वादन करता, क्योंकि आत्मा की भूख ऐसी है, असीमित अनंत प्रेम, और वो कृष्ण है, और उसका 1 बूंद भी हो गया ओवरफ्लो हो जाता है पीने के बाद, इसीलिए अष्ट सात्विक विकार, इट इज नथिंग बट ओवरफ्लोइंग ऑफ भक्ति रस, ज्यादा पी लिया तो अष्ट विकार, जो आस्वाद कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, और जिसने उस सिंधु का एक आस्वादन किया है उसके लिए ब्रह्मानंद भी जो है एक बिंदु है। बार 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 बाद में चर्चा करेंगे, भगवान कहते हैं, अरे भागवत में वर्णन है, जिस जिस भक्त ने भी भक्ति रस का आस्वादन किया है, सेवा का आस्वादन किया है, उसके लिए जब भगवान बोलते हैं कि तुझे ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहिए, नको मला काही नको मला तेज पाहिजे, ओनली दैट, मेरे को सिर्फ वो चाहिए बस, और कुछ नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु। तो इस तरह से ये ग्रंथ के बारे में इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने दिया है। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन, एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन है भक्ति रसामृत सिंधु का पहला 16 श्लोक, उसका उसका थोड़ा विस्तृत रूप से तात्पर्य के साथ उसका मतलब जो प्रस्तुत किए वो इंट्रोडक्शन है, तो कल उसके ऊपर हम चर्चा करें। श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।